بعد كده my rise on 12 of December year 2004 يالي مدد يالي مدد بابنو آج جمعہ ہے آج ہم گھٹ پاٹ پیئیں گے نیاز پیئیں گے آب صفا پیئیں گے امی پیئیں گے پاول پیئیں گے ہمارے گنانوں میں اس پاک پانی کے لیے بہت سے نام ہیں جمعہ کا جو دن ہے جب زمین اور آسمان پیدا ہوئے اور زمین کے اوپر جب پہلی دفعہ سورج چمکا وہ جمعہ کا دن تھا اور یہ رسول پاک نے ہم کو بتایا وہ جمعہ کا دن تھا اور یہ جمعہ کا دن ہم بڑی مرتبے سے پالتے ہیں میں خوش ہوا آپ سے مل کے ہم جس طرح امام کا دیدار کرتے ہیں میں ہمیشہ جماعتوں کو کہتا ہوں کہ جماعت کا جو دیدار ہے وہ پیر کے دیدار کے برابر ہے شیر والا ایک نان مہا رس پیر بنا سر مر من بھائی تمہیں رس پیوانے لفظوں کی بندش اس طرح سے ہمارے پیروں کے گھنانوں میں ہے کہ جس طرح ہیرے موتی کسی سونے کے زیور کے اندر چن چن کے لگائے جاتے ہیں ڈیزائن بنا کے اس طرح ہمارے پیروں نے گھنانوں کے اندر لفظوں کی رچنا کی ہے اے مومنو تھوڑا ٹائم نکالو اپنی زندگی میں سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ہر روز اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو ہم لوگ اس بابت میں بہت بے درکار ہیں اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو ہمارا جو مذہب ہے وہ نور کی کانسیپٹ کے اوپر ہے ہم حضرت امام کو اللہ کا نور مانتے ہیں پیر کے اندر محمد کا نور ہے جماعت کے اندر نور ہے گنان نور سے بھرے ہوئے ہیں گنان بولو نت نور بھریا جماعت خانے میں آؤ तो नूर के माहौल के अंदर आप आ गए। हमने अपने पीरों से पूछ के ये चीजें सीखी हैं कि जो ईमान है वो भी नूर है। इस सदरुद्दीन कहते हैं कि जी रे वाहना, ए मेरे प्यारो, किस अफेक्शन के साथ, किस मोहब्बत के साथ हमारे पीरों ने अपने मोमिनों को एड्रेस किया है, जी रे वाला वाला प्यारा। इस सदरुद्दीन बोलते हैं कि हाजिर जोमे को जानो, पाँव पड़ो और उसकी बंदगी करो, खिदमत करो, पूछ बंदगी के लुत्फ और बंदा नवाजी के मजे, बंदगी के लुत्फ और बंदा नवाजी के मजे पूछ उस बंदे से जो बंदे का बंदा हो गया। अभी यहां बंदे का मकसद यह क्या है कि हम जाहिर में हमारे शाहपीर जो है वो इंसानी रूप में है कि जैसे अंबिया थे, लेकिन एक खास चीज थी कि दूसरे लोगों से इन अंबिया और मुरसलीन जो थे, रसूल और नबी जो थे, उनको खुदा ताला ने दूसरे लोगों से जुदा समझा। अल्लाह एक जगह कहता है कि याद रखो, अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क मत करो, वो उनके साथ है। तो हमारे जो पीर थे उन्होंने इमामों के हुक्म से अपने इस मजहब को फैलाया। हमारा जो मजहब है वो इस्लाम दीन का मगज है। ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, तुम्हारा जो इस्माइली मजहब है वो दीन इस्लाम का ब्रेन है, मगज है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी कॉन्सेप्ट है, हमारा ख्याल, हमारा ईमान, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नूर की है। नूरें पे खाक नहीं पाया, ये जमीन नूर से पैदा हुई। खुदा ने तमाम जो कुछ भी क्रिएशन की है वो नूर से की है, मोहम्मद के नूर से की है। गिनान माह है तो साहिब छे, गिनान के अंदर साहिब बैठा है, मौला बैठा है, उसकी मोहब्बत बैठी है। इस मौला को समझने की कोशिश करो। ए जी आले अली नबी जी ने ओढ़की ने इसरे जन की दी छे सत पंथनी सार हो पीर सदर दीना बोले आ मोमन भाई तमे रह जो खुशी यार हो दूध माँ देखो मीरा करम एने दूध दे पड़शो जन जाल हो दाद देखो मेरा अली तना सच्चे शाह। हम जब गिनान पढ़ते हैं और अगर हम सचमुच खिलानों की जो रचना है, कंस्ट्रक्शन है, उसको समझें, तो दिल के अंदर मोहब्बत की एक लहर उठती है। आल अली नबी जी ने ओढ़खी नसरे बिछो, अली नबी की जो आल है, हजरत इमाम जो है, सदरदीन कहते हैं कि उसको ओढ़खना, पहचानना कि ये कौन है, और फिर उसकी खिदमत करो, उसका फरमान मानो। ये सदरदीन फरमाते हैं, मोमिनों होशियार रहो इस बात के लिए, दूध के अंदर जो खराबी है, कारमो कहते हैं कि जो चीज अच्छी नहीं है, दूध में कुछ गिर गया है, तो फरमाया देखो ध्यान करके, ये ऐसा तो नहीं कि दूध बिगड़ गया, यहां दूध से मतलब ईमान है। दूध के अंदर कोई खराबी है तो वो देखो, क्योंकि ऐसा दूध पियोगे तो खराब हो जाएगी तबीयत। इन्हें दूधे थे पड़सो झंझाड़, ट्रबल में पड़ जाओगे। और दाग कहते हैं निशान को, यहां दाग का मतलब है फ्लैग, हजर इमाम का जो फ्लैग है उसको दाग कहा गया है। दाग देखो अली तना, इस झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाओ। आल अली नबी इमाम की आप हिस्ट्री पढ़ो तो हमारे इमामों ने बहुत दुख उठाए हैं, हमारे पीरों ने दुख उठाए हैं, और हमारे इमामों और पीरों ने बड़ी कुर्बानियां की हैं, बदन की कुर्बानियां की हैं। अभी जो इमाम है वो मालिक है हमारा, इमाम हमारा जमात का माँ बाप है। जब जमातों के अंदर कोई आफत आती है तो इमाम अपने ऊपर ले लेते हैं, और हजरत इमाम सुल्तान अहमद शाह ने ये फरमाया है कि जमात छे मारो अंग छे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना गला कटवाया, मुर्तजा अली ने शहादत पाई, हमारे बहुत से इमामों को जहर दी गई। मौलाना शाह खलीलुल्लाह थे, कुम के अंदर मुल्लाओं ने उनके खिलाफ ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि कुम के शहर में शाह खलीलुल्लाह माँ बाप तीन चार असहाबों के साथ बाजार से निकले तो बलवाइयों ने इनके ऊपर हमला किया, शाह खलीलुल्लाह के बदन के टुकड़े किए हैं, उस बॉडी को गुस्ल नहीं दे सकते थे क्योंकि टुकड़े हो गए हैं, बदन के टुकड़े किए गए। हमारे इमामों ने बहुत दुख उठाए, हमारे पीरों ने भी बहुत दुख उठाए हैं, और ये दुख उठाए हैं दीन के लिए। आल अली नबी जी ने ओढ़खी नसरे में जो जेने की दीछे सतपंथ ने सार, सार कहते हैं मदद। इमामों ने दीन इस्लाम को कायम रखने के लिए मदद की। सबसे पहले अगर हिस्ट्री आप पढ़ो तो दीन इस्लाम जो है, मैंने अपनी वादों में बहुत दफा जिक्र किया है कि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के टाइम से इस्लाम चला। जब दुनिया पैदा हुई, आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने पैदा किया, इससे भी पहले इस्लाम मौजूद था, और इस्लाम की इस हालत को हमारे पीरों ने सतपंथ कहा है। सतपंथ मीन ट्रू पाथ, और इस्लाम ट्रू पाथ है, सबमिशन है। उस जमाने से अगर हम ये देखें कि जैसा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान किया है कि मैं हर जमाने के अंदर हर नबी के साथ था, और अल्लाह कहता है कि हर नबी मुसलमान था, अगरचे उस वक्त जबान के हिसाब से, अरबी जबान के हिसाब से مسلمان نام نہیں تھا کیونکہ عربک لینگویج نہ تھی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہر نبی جو تھا وہ مسلمان تھا، اس کا دین اسلام تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام اسلمہ ہے، دین ابراہیمی ہے یہ اسلام جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس کو دین ابراہیمی کہا گیا. یہ جو دین ہے اسلام، اس کا جو مغز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کی سمجھ لے کے ہم اس کی عبادت کریں. ہمارے دوسرے جو عام لوگ ہیں، بھائی ہمارے ہیں، وہ نور کی حیثیت تک نہیں پہنچے ہیں. نور کا نام صرف ہم اسماعیلیوں کے اندر ہی زیادہ کامن ہے، ہم نوری حالت کو زیادہ جانتے ہیں، جاننا چاہیے. محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، خاتم المرسلین جس کے نور سے خدا تعالی نے ساری کریشن کی، ماتا آمینہ کے پیٹ میں تھے، اور حضرت آمینہ فرماتی تھی بعد میں کہ جب محمد میرے پیٹ میں تھا تو فرشتے مجھے آ کے سلام کیا کرتے تھے. محمد رسول اللہ کا جو درجہ عام لوگ جان نہ سکے، لیکن پھر صدر دین نے ایک جنان کے پاٹھ میں بہت اچھی طرح سے خلاصہ دیا کہ محمد کا درجہ کیا ہے. سات سرگنا کھلے آدوار جس دن نبی محمد جنم لیا. رسول اکرم جب پیدا ہوئے تب پچھلا دن کہتے ہیں خدا تعالی نے جنت کے ساتوں طبق کھول دیے. یہاں کیا تھا کہ گنہگاروں کو معاف کر دیا، جنت میں بھیج دیا محمد کی پیدائش کی خوشی میں. رسول اکرم جب پیٹ میں تھے تو ماتا آمینہ کہتی ہیں مجھے ایسے ایسے خواب آتے تھے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں آسمانوں میں پھر رہی ہوں. اور جب رسول اکرم نے اس دنیا کے اندر ظاہری طور پہ سانس لیا تو خدا تعالی نے اس خوشی میں جنت کے ساتوں طبق کھول دیے. اس زمانے کی ریت کے حساب سے جو مولود پیدا ہوتا تھا اس کو تھوڑے مہینے تک ماں دودھ پلاتی تھی، پھر کوئی دوسری عورت ڈھونڈی جاتی تھی، اچھے خاندان کی عورتیں یہ کام کرتی تھیں کہ ان کو جب بچہ ہوتا تھا تو پھر وہ ڈھونڈتی تھی کہ کوئی دوسرا بچہ بھی ملے کہ اس کو دودھ پلایا جائے. یہ اس زمانے کی نوبلٹی کے اندر جو نوبل لوگ تھے ان کی یہ رسم تھی. ماتا آمینہ ذرا بڑی عمر کی تھی اس لیے دودھ کی تکلیف بھی تھی، اور ایک جوان عورت کی تلاش ہوئی کہ جس کا چھوٹا بچہ ہوئے، کیونکہ جوانی کے اندر جو ماں ہوتی ہے اس کو دودھ زیادہ اترتا ہے. تو حضرت حلیمہ اس وقت مکہ میں آئی اور ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی ایسا نیا بچہ پیدا ہوئے تو میں اس کو لے جاؤں. تو اس کو پیش کیا گیا، حضرت حلیمہ کو رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پلانے. ماتا حلیمہ کہتی ہیں، ان کا چھوٹا بچہ تھا، کہ میں جب محمد کو لے کے گئی تو ایک عجیب قسم کی لہر میرے بدن میں گھوم گئی. مجھے ایسا احساس ہوا کہ یہ مولود جو ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں، میرے خیالات میں فرق پیدا ہو گیا. اور جب بھی میں محمد کو دودھ پلاتی تھی پہلے نہ آتی تھی، गुसल करके फिर दूध पिलाऊं, पहले मोहम्मद पी लेवे, फिर मैं अपने बच्चे को दूध पिला दीजिए। बीबी हलीमा का भी दर्जा बहुत बड़ा है कि उसने मोहम्मद को दूध पिलाया। रसूल अकरम इस तरह से दुनियावी तौर पे इंसानी हालत, क्योंकि खुदा ताला का जो कानून है वो मैटर के ऊपर, जो मटेरियल चीजों है उनके ऊपर उसका कानून बिल्कुल यकसा कानून है, चाहे वो बॉडी नबी की हो गए, इमाम की हो गए, वो बॉडी सब्जेक्ट टू लॉज ऑफ नेचर, क्योंकि बॉडी जो है वो इंसानी बॉडी है। लेकिन फर्क जरूर है थोड़ा सा, दूध का जो बर्तन है वो दूध का बर्तन है, और खाना पकाने के लिए जो बर्तन होता है वो और किस्म का होता है। तो ये जो आम हस्तियां हैं आम लोगों की, उनको फिजिक्स का लॉ लगता है, मगर जो आला हस्तियां हैं नबियों पैगंबरों की, पीरों की, इमामों की, उनको भी ये लॉ लगता जरूर है, लेकिन उनकी खुद की मर्जी के ऊपर। नबी मोहम्मद को या किसी और नबी को, इन नबियों इमामों को ये इख्तियार होता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या चीज कर सके, क्योंकि वो मालिक हैं। रसूल अकरम इस तरह से बड़े हुए, मैं उनकी सारी जिंदगी बता नहीं सकता, किताबें मौजूद हैं पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो बहुत किस्म के लेसन से भरी हुई है। अल्लाह कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुल हुस्ना, तुम्हारे लिए मोहम्मद की जिंदगी के अंदर बहुत से अच्छे सबक हैं उसके इखलाक के और उसके मॉरल्स के। और रसूल अकरम की जिंदगी रियली इन तमाम चीजों से भरी हुई है, हुजूर का इखलाक, हुजूर का बिहेवियर, हुजूर की ट्रीटमेंट, हुजूर का उठना, हुजूर का बैठना, उसका बोलना, उसकी सारी जिंदगी हमारे लिए एक लेसन की तरह है। और अल्लाह कहता है तुम्हारे लिए मोहम्मद की जिंदगी में बहुत से लेसन हैं, सबक हैं देने के लिए। हुजूर ने कभी भी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोला, आम बच्चों की तरह शरारत नहीं करते थे। एक दफा रसूल अकरम, अभी मैं उसकी पाकीजगी की बात कर रहा हूं, बच्चों के साथ खेल रहे थे, छोटी उम्र थी, 3-4 बरस के थे, और तहबंद बांधा हुआ था, लुंगी बांधी हुई थी, पाजामा नहीं पहना हुआ था, और खेलते खेलते लुंगी खुल गई, अब बेहोश हो गए। इतनी शर्म और उसका एहसास कि नबी करीम बेहोश हो गए, ये एक अजीम चीज है उसके कैरेक्टर की। रसूलुल्लाह जहां से निकलते थे निगाह नीची रहती थी, और बच्चों के साथ खेलते खेलते भी कभी उन्होंने ऐसा बद अखलाकी का कभी कोई काम नहीं किया कि जैसा आम तौर पर बच्चे कर लेते हैं। 3 साल की ही उम्र थी, बच्चों से खेल रहे थे तो 2 फरिश्ते आसमान से उतरे, और वो फरिश्ते इस तरह के थे, इस कदम में कभी देखे नहीं थे, बच्चे सब भाग के दूर चले गए। इन 2 फरिश्तों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, जमीन पे लिटाया, और एक फरिश्ते ने सीने पे ऐसा हाथ मारा तो सीना खुल गया, जिस तरह चाकू से, छुरी से सीना खोल देते हैं डॉक्टर सर्जन लोग, उसने सिर्फ ऐसा हाथ मारा तो सीना खुल गया। अब वो सब लड़के देख रहे हैं, मगर खून टपका नहीं। वो दूसरा फरिश्ता जो था वो ट्रे में कुछ लेके आया था, तो उसने वो ट्रे में से एक चीज उठाई, लेकिन अंदर से बहुत सी चीजें उसने निकाल दी और ट्रे में जो कुछ लेके आया था वो सीने के अंदर डाल के हाथ फिराया, सीना मिल गया। इसका एक इशारा कुरान शरीफ में है। अल्लाह कहता है, ऐ मोहम्मद याद कर, हमने तेरे सीने को खोल के उसके अंदर हमने चीजें डाली हैं। यानी क्या था वो चीज? इंसानी गिलाजत, वीकनेस, इंसान की भूले गलतियां उसमें से सीने से निकल के उसको प्योर बनाया। प्योर तो थे, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि नबियों इमामों के जो बदन होते हैं वो भी सब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर है, लेकिन यहाँ रसूल अकरम के सीने मुबारक में से बहुत सी चीजें निकाल के दूसरी चीजें डाली गई। ये एक इशारा है उसकी अजमत और बड़ाई का, पाखीजगी का। हम लोग जो इंसान हैं आम, हमारे अंदर कभी कभी छोटी उम्र से सुनते रहते हैं, लोगों की बातें देखते हैं, तो इसलिए हमारे ख्यालात पाक नहीं रहते, बदिया बुराइयां हमारे ख्यालों में घुस जाती हैं। मगर ये जो अहले बैत हैं, अल्लाह कहते हैं ना कि अहले बैत को मैंने पाक बनाया है। यहाँ अल्लाह अहले बैत की हुरमत की, तहारत की जो आयत है उसका मकसद ये है कि जो अहले बैत है उनको ख्याल खराब कभी नहीं आते, वो पाक है। हमारे अंदर बदजनी आती है, यानी हम किसी को बुरा समझते हैं उसको बदजन कहते हैं, हसद करते हैं, किसी को अच्छा नहीं समझते हैं, नफरत करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसी बहुत सी बदियां हैं हमारे ख्यालात के अंदर। अहले बैत जो है वो पाक है। रसूलुल्लाह की इस हालत को जो अल्लाह ने जिक्र किया है कि हमने तेरे सीने को चाक करके उसको पाक बनाया, नबियों इमामों के जो अल्फाज भी होते हैं वो नूर से भरे होते हैं, पाक होते हैं। रसूलुल्लाह 40 बरस के हुए, छोटी उम्र से आप हिरा की गुफा में, गार में जाके इबादत किया करते थे। किसी ने पूछा, या नबी, नबूवत से पहले आप क्या किया करते थे? तो हुजूर ने फरमाया, मैं खुदा का ख्याल किया करता था, ये इबादत थी जो किया करते थे। एक फर्क मैं जरूर कहना चाहता हूं, हम इस्माइली जो हैं, हम ये नहीं मानते कि रसूलुल्लाह 40 बरस की उम्र में नबी बने हैं। मैंने अभी आपको गिनान का पाठ सुनाया, मोहम्मद की पैदाइश हुई तो खुदा ने 7 जन्नतें खोल दी। हमारा अकीदा यह है कि हर नबी, हर इमाम पैदाइश से ही नूर के हामिल होते हैं, सिर्फ फर्क यही है कि वो वक्त का इंतजार करते हैं कि जब वक्त आता है तब वो डिक्लेयर करते हैं, मोहम्मद नबी थे, पैदाइश से ही नबी थे। रसूल पाक कहते हैं कि हर नबी के अंदर मेरा नूर था, तो वो 40 बरस में नबी नहीं थे? हाँ, ये नहीं मानते। रसूल नबी थे, रसूल थे, नबी थे, लेकिन 40 बरस तक ठहरने की जरूरत क्या थी? ठहरने की जरूरत थी। अली की पैदाइश का इंतजार करते थे, जो काम करना था इस्लाम का रसूलुल्लाह उसके लिए किसी एक मददगार की इंतजार करते थे। आप जब 30 बरस के हुए तो मुर्तजा अली पैदा हुए। अली नबी के जाहरी जिंदगी में 30 बरस का फर्क था, और ये 30 बरस का फर्क भी अगर आप देखो तो अरबस्तान की जो हिस्ट्री थी, उस वक्त का जो हाल था, उसके लिए ये जरूरी था कि रसूलुल्लाह अपनी नबूवत का इजहार करे तो उसको मददगार चाहिए। متا فاطمہ بنت اسد اپنے حمل کے آخری دنوں میں تھی. اس خیال سے کہ ابھی معلوم نہیں کب ڈیلیوری ہو گئے, تو چلو میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے آؤں, تو گھر سے نکلی. قریب ایک میل ڈیڑھ میل خانہ کعبہ تھا. متا فاطمہ بنت اسد وہاں گئی, چلتے 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 تھک گئی. جب خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچی تو درد ہونا شروع ہوا ڈیلیوری کا. کہتے ہیں یا اللہ میں ایسی حالت میں کہاں جاؤں, گھر واپس جانے کی طاقت نہیں. تو ہسٹری میں لکھا ہے کہ دیوار پکڑ کے دوسرا ہاتھ پیٹ پہ تھا تو دیوار پھٹ گئی, دیوار شک ہو گئی اور اتنی جگہ آ گئی کہ ماتا فاطمہ اندر چلی گئی. جب اندر گئی دیوار مل گئی اور اندر خانہ کعبہ کے اندر مرتضی علی پیدا ہو گئے. ہر بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے, اور اگر نہیں روتا تو اونگا کر کے پاؤں پکڑ کے اس کو تھوڑا سا راستے سے مارتے ہیں تاکہ گلے میں اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو نکل جاوے. بچے کو رونا چاہیے, اگر وہ نہیں روئے مر جاتا ہے, سفوکیٹ ہو جاتا ہے. لیکن مرتضی علی روئے نہیں, آنکھیں بھی نہیں کھولی. کافی دیر ہو گئی, ماں کا دودھ بھی نہیں پیا. تیسرے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا لگا اور دوڑے ہوئے آئے اور جا کے مرتضی علی کو اٹھایا, جیسے ہی مرتضی علی کو اٹھایا آنکھیں کھولی اور دونوں نے, علی نبی نے آنکھوں سے جو میسج دینا لینا تھا وہ لے لیا. ہاں سے مرتضی علی ہاں سے رسول پاک نے اپنی زبان مرتضی علی کے منہ میں ڈالی, اور سب سے پہلے ماں کا دودھ چوسنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کی زبان کو علی چوستے رہے. یہ بڑی سٹل چیز ہے, لطیف چیز ہے, اس میں بڑے بڑے بھید ہیں. کبھی کسی جگہ ایسا نہیں پڑا گیا. لیکن یہ بات صرف علی ہی کے لیے نہیں تھی, جب مولانا حسن پیدا ہوئے تو ایسا ہی ہوا. حضور آئے اور امام حسن کو اٹھا کے اس کے منہ میں رسول اللہ نے اپنی زبان ڈالی, اور حضرت امام حسن نے نانا کی زبان چوسی. جب امام حسین پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. اس کے بعد تو امام زین العابدین تھے, جو کبھی رسول اللہ تھے نہیں. لیکن یہ تینوں عام لوگوں کی نظر کو چھوڑ کے ان تینوں کے لیے کبھی خیال کرو تو کوئی کنیکشن ہونا چاہیے علی میں, نبی میں, حسن میں, حسین میں. یہ تینوں نے رسول اللہ کی زبان چوسی. یہ الہی راز ہے جو سب کے اوپر شاید ظاہر نہ بھی ہو سکے, لیکن محمد مصطفیٰ نے خوشی ظاہر کی ہے. اب مرتضی علی بڑھ رہے ہیں, یہ وہ مولود ہے, یہ وہ انسانی ہستی ہے کہ جو عام لوگوں جیسا نہیں ہے. بعض کتابوں کی روایت سے آپ 3 مہینے کے تھے, بعض روایت سے 6-7 مہینے کے تھے. ابھی 3 مہینے کے 6-7 مہینے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن کیا تھا کہ حضرت مرتضی علی انگوٹھے میں کریڈل میں سوئے ہیں, एक अजदहा निकला। अजदहा वो स्नेक के जो बहुत बड़े साइज में होता है, पाइथन्स को कहते हैं इंग्लिश में। वो अरबस्तान का मुल्क था, रेत मुल्क था, कोई चीज नहीं थी, पंगूड़े में सोए थे, तो ये पाइथन निकला, ऐसा मुंह ऊंचा किया क्रेडल में, मुर्तजाली की आंख खुल गई। इस बच्चे ने उसको हाथ से पकड़ा, नन्हे नन्हे हाथ है, और दूसरे हाथ से उसके जबड़ों को इस तरह से खींचा कि वो चीरा गया, आप फिर सो गए। थोड़ी देर के बाद माता फातिमा निकली तो हैरान हो गई, मरा हुआ सांप पड़ा है, अभी सो रहे। तो मां ने लकब दिया हैदर, ये हैदर नाम मां ने दिया। हैदर के बहुत मतालिब हैं, शेर को भी हैदर कहते हैं और सांप को मारने वाले को भी हैदर कहते हैं। अली मुर्तजा अली का ये नाम बहुत मशहूर है बहादुरी के अंदर। मुर्तजा भी छोटी उम्र से ही बड़े ताकतवर थे, अल्लाह की शुजाहत थी उनमें, और बड़े बड़े काम किए। 5 बरस की उम्र में खेल रहे थे बच्चों के साथ, और 12-12, 13-13 बरस के जो बच्चे थे वो भी साथ थे, तो कुछ खेल में गड़बड़ हो गई तो ये 5 बरस के बच्चे ने उनको मार मार के उनको भगा दिया, और वो रोते रोते घर पे गए भी, क्या हुआ? कफ़न्ना अली, अली ने हमको तोड़ फोड़ दिया। 5 बरस के लड़के ने 12-13 साल के लड़कों को कहते हैं अली ने हमको तोड़ फोड़ दिया। ये अली की कुव्वत थी जो को इस्लाम के लिए तैयार हो रही थी। मुर्तजा अली ने 40 बरस की उम्र में डिक्लेयर किया कि खुदा ने मुझे नबी बनाया है। हजरत रसूल अकरम ने, और मुर्तजा अली उस वक्त 10 बरस के थे। मुझे बड़ा अफसोस होता है, गुस्सा भी आता है और फिर अफसोस भी होता है। यानी मेरे गुस्से का मतलब ये नहीं कि मैं धम पछाड़ कर हूं, लेकिन नाराजगी होती है, दिल दुखता है कि हमारे बहुत से स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि अली 10 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। अरे बेवकूफो, इस्लाम का जो मालिक है उसको तुम ये कहते हो कि वो 10 बरस की उम्र में मुसलमान हुए, तो उसके पहले क्या अस्तग़फ़िरुल्लाह व नऊज़ बिल्लाह, क्या वो काफ़र थे, मुशरिक थे, बुत परस्त थे? मुझे इस चीज के लिए बहुत गम है ये कहा जाए कि 10 बरस की उम्र में मुसलमान हुए, अली मुसलमान हुए। तो फिर नबी के लिए भी कहना चाहिए कि नबी 40 बरस की उम्र में मुसलमान हुए, उसके लिए क्यों नहीं कुछ बोलता? हमारी ये भूल और गलती है कि हम बहुत दफा ऐसी किताबें पढ़ लेते हैं कि जो किताबें हमारे तरीके के मुताबिक नहीं है। हम शिया हैं, सुन्नी नहीं। किसी शिया ने कभी ये नहीं लिखा कि अली 10 बरस की उम्र में मुसलमान हुए। अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद, कुरैश के बुजुर्गों को जमा करके उनको दावत करो इस्लाम की। अली को कहा या अली, 10 बरस की उम्र में, किसी रेफरेंस में 12 साल की उम्र है, लेकिन ये चीज 10 के 11 साल में हुई। या अली, इंतजाम करो, कुरैश के 40 जो बुजुर्ग थे उनको इकट्ठा किया, दावत अशीर कहते हैं इसको, और ये अल्लाह के हुक्म से ये दावत की गई। 40 खाने वाले, क्या एक बकरा खा जावे, एक एक आदमी ऐसे शख्स है। मुर्तजा अली क्या लेके आए? एक बकरे की टांग, बकरे की, गाय की नहीं, बकरे की टांग, पांच रोटियां, दूध का एक प्याला। बीच में पड़ा है, मोहम्मद क्या मजाक किया है हमसे? क्योंकि उसमें रिश्तेदारी के हिसाब से नाना भी थे, मामा भी थे, चाचा भी थे, दादा भी थे, सगे सगे रिश्तेदार नहीं थे, मगर दूर के हिसाब से। मोहम्मद क्या तूने हमसे मजाक किया है? ये एक आदमी को भी पूरा नहीं होगा। रसूल पाक फरमाते हैं, चाचा शुरू तो करो, बहुत कुछ है। मुर्तजा अली उठे, बकरे की टांग हाथ से पकड़ी है, उसको दिया, उसने एक बोटी नोच ली, रोटी दी, उसका एक टुकड़ा लिया, फिर दूध का प्याला दिया, तो दूध का एक घूंट पिया, फिर दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, 40 आदमियों में एक सर्कल पूरा हुआ, तो इधर से फिर शुरू किया, इस तरह से पूरा हुआ, इधर से फिर शुरू किया, 8, 10, 12 कितने दफा गए, सबके पेट भर गए, डकार लेने लगे, दूसरी चीज खाने की जरूरत भी न पड़ी, और अब देखते हैं ये तो थोड़ा गोश्त भी बाकी है, आधी पौनी रोटी बाकी है, दूध में थोड़ा, प्याले में थोड़ा दूध भी बाकी है, एक दूसरे का मुंह रख रहे हैं, ए मोहम्मद तुमने हमारे साथ जादू किया। ये बात जादू की नहीं थी, ये उसका मुजजा था। उस वक्त जब ये खा पी चुके, तो नबी करीम खड़े होके कहने लगे, खुदा ने मुझे नबुवत बख्शी है और मुझे हुक्म किया है कि मैं इस्लाम की दावत दूं। मैं तुम सबको दावत देता हूं कि कौन मेरी इस मजहब को, दीन को फैलाने के लिए, इशायत के लिए कौन मेरी मदद करेगा। तो मौला मुर्तजा अली खड़े हो गए, दुनियावी हिसाब से मुर्तजा अली ठिंगने थे, शॉर्टकट के थे, जब बिल्कुल जवान हो गए तो 5 फीट के थे सिर्फ, 10-11 साल के अली खड़े हुए, कहने लगे, ऐ मोहम्मद मैं आपकी मदद करूंगी। मैं फरमा बैठ जाओ, बैठ गए, वापस इनको दावत दी, कोई खड़ा ना हुआ, मुर्तजा अली फिर खड़े हुए, तीसरी दफा ऐसा हुआ, किसी ने नहीं कहा कि हम तेरी मदद करेंगे। मुर्तजा अली कहते हैं इस 10 वर्ष की उम्र में, या नबी मैं आपकी मदद करूंगा, और अगर किसी ने, दुश्मन ने आपको सताया तो मैं उसका पेट फाड़ डालूंगा। और हकीकत ने ये जाहिर कर दिया, हिस्ट्री ने जाहिर कर दिया कि दुश्मनों के पेट फाड़ डाले मुर्तजा अली ने। बड़े बड़े शहजोर जो जंगजू जो थे, एक तलवार की घात में उनसे जमीन दोस्त कर दिया। ये अली की तलवार थी कि जिसने इस्लाम को बचाया, ये अली की तलवार थी, अली का अज़्म था, अली की ताकत थी, ये कुव्वत जो थी वो इलाही कुव्वत थी। खैबर की बात आप कभी पढ़ो तो अली की बहादुरी तो ठीक, लेकिन अली की जाहिरी ताकत का अंदाजा नहीं हो सकता। खैबर का किला है बहुत पुराना, और यहूदियों को उसमें नाज था, 40 फुट ऊंचा दरवाजा है, 2 फुट चौड़ा है, 20 फुट चौड़ा है, 2 फुट मोटा है, ऐसे 2 दरवाजे हैं इस किले के, 2 उंगलियां नीचे डाल के दरवाजे के नीचे, सिर्फ हाथ की 2 उंगलियां, उसको ऐसा हिलाया तो सारा दरवाजा हिंजिस में से ऊंचा हो गया। उसको बाहर निकाला और अली ने फेंका, इतनी दूर चला गया कि दिखना बंद हो गया, और दूसरा दरवाजा उखाड़ के खंदक पे डाल दिया, और इस्लामी लश्कर को इशारा किया तो अंदर चले आए। दुनिया के राइटर्स, हिस्टोरियंस इस बात के लिए बड़े हैरान हैं कि ये क्या बात है। बहुत से इस्लामी राइटर्स ने तो ठीक है क्योंकि मुसलमान हैं, लेकिन यूरोपियन राइटर्स ने भी इन बातों को हैरानी के साथ लिखा है। लोगों ने पूछा, या अली ये इतनी कुव्वत कहां थी? फरमाया, ये कुव्वत रब्बानी थी। आप अगर हिस्ट्री पढ़ो तो हमारे इमामों की अलग अलग किस्म की बहादुरियां, मौजज़े, उनकी हैसियत के हिसाब से, उनकी बड़ाई के हिसाब से, उनकी अजमत के हिसाब से, उनकी नूरानियत के हिसाब से हमें मिलती हैं। किसी न किसी जरिए से आप देखो तो हर इमाम ने दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत की है। मुर्तज़ा अली जो थे उन्होंने इस्लाम को बचाया, अपनी खिलाफत मांगी नहीं, छोड़ दिया, लेकिन बचाया। अगर उस वक्त मुर्तज़ा अली तलवार निकाल लेते तो इस्लाम खत्म हो जाता। अबू सुफियान आया था, जब हजरत अबू बकर खलीफा बनाए गए तो अबू सुफियान आके कहता है, अली क्यों सोए हुए हो? अबू बकर का कोई हक नहीं कि तुम्हारी खिलाफत ले जावे, मैं तुम्हारी मदद करूं, मैं मदीने की गलियां सोल्जर से भर देता हूं। मुर्तज़ा अली कहते हैं, ऐ अबू सुफियान, तुम कब से इस्लाम का दोस्त बना? मैं तेरे फरेब को जानता हूं कि मैं खड़ा होके जंग शुरू करूं तो इस्लाम आपस आपस में लड़ के खत्म हो जाए, जाओ निकल जाओ यहां से। अली चुप हो गए, अपनी खिलाफत दूसरों के हाथ में जाते हुए चुप हो गए। लेकिन जब हुसैन का मामला आया तो हुसैन खड़े हो गए, गर्दन दे दी, मगर यजीद की बैत नहीं की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अगर आप ख्याल करो तो हुजूर पॉलिटिक्स के हिसाब से चुप हो गए और बिल्कुल सुकून वाली जिंदगी गुजारते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी कुर्बानियां की हैं। अब उनकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत बड़ी इल्म की दावत भी दी है, लोगों को सिखाया है। इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, हमारे तमाम इमाम जो हैं। अब मैं आपको सिर्फ चंद बातें इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहदातार की करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी चीजें हिस्ट्री में नहीं लिखी गई, और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने इमाम मोहम्मद सुल्तान शाह के हुजूर में रहा भी हूं और इसे वो दावा, वो दौर मैंने देखा है। ये शहनशाह जो था कराची में पैदा हुआ, पकड़ी हुई है मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की, अंदर चले आए 1979 में। लंदन के अंदर हज़रत इमाम ने 7 दिन का प्रोग्राम बनाया था। जब पहले दिन आए तो शहजादा रहीम की उंगली पकड़ी हुई है और चले आए। दूर से जब मैंने देखा तो मुझे ये बात याद आ गई, 3 बरस के बोला को सुल्तान मोहम्मद शाह को दादा हाथ में उंगली पकड़े चले आते हैं। कुर्सी के नजदीक आए तो कुर्सियां तो 2 थी, बोला बैठे, फिर अली शाह माँ बाप बैठे, तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को उठा के कुर्सी के वो जो हत्थे होते हैं जिसके ऐसा हाथ रखते हैं, इस पे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को खड़ा किया। है जमात पर मैं सुधाया कमरिया हाजी नजर अली, हे जमा ये सुल्तान है। सुल्तान का नाम दादा ने दिया था और माँ उसको मोहम्मद से पुकारती थी, इसके लिए मोहम्मद सुल्तान हुआ, जिसको हम सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं। हे जमात ये सुल्तान है, ये सारी दुनिया का सुल्तान बनेगा और तुम लोगों को बहुत खुशियां और लाड लगाएगा। उस वक्त इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 3 बरस के थे। चैतन्य मोक्षाधार की है। तमाम इमामों की हिस्ट्री में सबसे छोटी उम्र थी जब इमाम बने हैं, 8 बरस भी पूरे नहीं हुए थे और इमाम बने। इस उम्र के 8 बरस का एक बच्चा दुनिया की नजर से जब प्रणाम करता है तो इस कलाम के अंदर एक नूर की सिफत पैदा होती है। कलाम इमाम मुबीन में ये पहला फरमान है, हे जमात हमें तुम्हारा बुजुर्ग चाहिए, बुजुर्गी पामेला चाहिए। हमारी माता बीबी फातिमा पीताम्बर तुजारी इन्हें औलाद चाहिए। इस तरह फरमान कर रहा है कि जैसे कोई 70 बरस का बुढ़ा फरमान करता हो, और 8 बरस का मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह अपने इमामत में सबसे पहला यह फरमान है। इन चीजों को पढ़ो तो उसके अंदर उसकी बड़ाई नजर आती है, उसकी अक्ल और हिम्मत नजर आती है। इस छोटी उम्र से ही उसने जमात का रंग बदलना शुरू कर दिया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के 72 बरस की इमामत ने जमात ने जो तरक्की की है वो उसके पिछले 500 बरस में भी नहीं की। जमात को जमीन से उठा के अरश पर पहुंचा दिया। जमात के अंदर ऐसा अरेंजमेंट और निजाम पैदा कर दिया, काउंसिलें बनाई, लॉ लेके आए, एडमिनिस्ट्रेशन बनाई। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की जिंदगी एक बहुत बड़ी जिंदगी है कि जिसको सोने की इंक से लिखना चाहिए, और है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब यह हज़रत इमाम का जो दौर है दीनदारों, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि इमाम की इमामत के अंदर मौजूद है। हमारे में से बहुत से हैं कि जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह की इमामत को देखा है, दीदार भी किया है। लेकिन आज हमारा हज़रत इमाम जो काम कर रहा है, दीन के लिए जो काम कर रहा है, वो ऐसा काम है कि जिसको आम लोग नहीं जानते। मुझे एक बात याद आती है, अभी 1935 में उस दिन जिस दिन की ये बात है, 31 दिसंबर था, आखिरी दिन था 1935 का, पंजाब के लगभग 12-13 हजार इस्माइली दिल्ली में जमा हुए इमाम के फरमान से। इमाम आके हर रोज शामियाना में अदर आते थे, दीदार देते थे, मजहबी काम काज करते थे। उस वक्त इरशाद अली मौला के साथ थे। इरशाद अली 38 में गुजर गए। उस रात को 31 दिसंबर की नाइट ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, और तकरीबन 400 जितने वॉलंटियर्स थे। जब इमाम इस मंडप के अंदर आए जलसे के अंदर, तो ये मुस्लिम वॉलंटियर्स ने नंगी तलवारों से दोनों साइड में खड़े थे, और अपनी तलवारें निकाल के इन्होंने इस तरह आंख बनाई, इसके नीचे से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह निकले। ऐसे नारे लगाए गए कि जमीन दहलती थी, अल्लाह अकबर। मुझे वो रात याद है, दिल कांपते थे उनका जोश देखते, इमाम के ऊपर फिदा थे वो। बड़े बड़े बुजुर्ग उस वक्त मौजूद थे, तमाम बड़े बड़े लीडर जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूं, बहुत तो नहीं जानता लेकिन नामों से खबर है। रात के इस दफे मैं इसकी ज्यादा डिटेल नहीं देता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इमाम ने उस वक्त बहुत से अच्छे लेक्चर दिए, तजवीजें दी, और मैं ये भी बोल दूं कि उस वक्त इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, लाइफ प्रेसिडेंट थे। मुस्लिम लीग की स्थापना सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1906 में की थी, और उस वक्त वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। मुसलमानों को बहुत जोश आया ईमान के लिए। दूसरे दिन मौला जमात में आए, सब बड़ी मिशनरी खड़े हैं, मौला खुश थे, बहुत खुश थे। सब बड़ी कहते हैं, मौला कल रात को हमारे दिल हमारे सीने खुशी से भर गए, मुसलमानों का जोश देख के आपके लिए हमको बहुत खुशी हुई। हाँ सब बोले, ये मेरे नाना की उम्मत है, अगरचे वो लोग मुझे नहीं जानते लेकिन ये मेरे नाना की उम्मत है, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। है सब बोले, एक दिन आएगा ये सब मेरे पांव पड़ेंगे। वो वक्त नजदीक आ रहा है, हमने बहुत दुख उठाए हैं, हमारे इमामों ने पीरों ने भी बहुत दुख उठाए हैं, और अभी भी इस वक्त हम अच्छी हालत में नहीं है। यानी अच्छी हालत मेरा मतलब ये है कि बहुत से लोग उम्मत के अंदर हमें अच्छा नहीं समझते, हमारे ऊपर ताने होते हैं बहुत से। ए मोमिनो, ये सब मिट जाएगा, जमाना आएगा शायद हमारी इस जिंदगी के अंदर न दिया गया, यानी 30-40 या 50 बरस निकल जाएंगे पॉसिबली। जमाना आएगा कि दुनिया भर के मुसलमान उस जमाने के इमाम के पास आके उसकी इमामत को, क़यादत को, उसके खिलाफत को कबूल करेंगे। ये आल अली नबी के हैं, ये दीन को कायम करना इसका काम है। आज हाजिर इमाम जो कुछ कर रहे हैं, आप अगर हिस्ट्री जानते हैं और आप अगर हाजिर इमाम की जितनी भी हरकत और सकनात है उनको देखते हैं, तो ऐ मोमिनों, ये सब बातें इस्लाम को मजबूत करने के लिए हाजिर इमाम कर रहे हैं, इस्लाम को मजबूत करने के लिए। हमारा एक ही फर्ज है कि हाजिर इमाम का हुक्म मानो, और जिस जिस स्कीम के अंदर हाजिर इमाम हमको इजाजत दे दे, हम जाहिर तौर पर भी बातिन तौर पर भी हम उसमें मदद करें। हाजिर इमाम जो कुछ कर रहे हैं वो तमाम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं खसूसी तौर पे, लेकिन उसमें साथ साथ ये भी है कि जो मुसलमान नहीं है, जो हमारे मौला के मुरीद नहीं है, उनको भी इसमें फायदे मिले, लाभ मिले, स्कूलों में, हॉस्पिटल में और दूसरे जो कुछ भी आगा खान फाउंडेशन के नीचे जितने इदारे हैं, उन तमाम इदारों के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा राज और भेद है। ये उम्मत के लिए कर रहे हैं, इस दीन इस्लाम के लिए हो रहा है, हमको हज़रत इमाम का फरमान मानना चाहिए। जो वो कहे, जो हिदायत आवे, उस हिदायत के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। इस वक्त मौजूदा हिदायत ये है, हर फरमान के अंदर इमाम का इशारा ये है, जमात खाने रोज आओ। कोई भी फरमान उठाओ मौला का, अगर इमाम यही कहते हैं, जमात खाने रोज आओ, जमात खाने रोज आओ। इसमें भेद है, पहली चीज तो यह है कि रोज जमात खाने आने से हमारी कौम करीब आती है, मजबूत होती है, हमारा ईमान मजबूत होता है, हम बदलो बुराइयों से बचते हैं और जमात एक मुट्ठी की तरह मजबूत और कवी हो जाती है। जमात खाने रोज आओ, दिल को पाक साफ रखो, एक दूसरे की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से हसद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करो। साहब के फरमाने है कि गो आउट ऑफ योर वे, अपना रास्ता छोड़ के भी दूसरों की मदद करने की जरूरत हो तो मदद करो। ये पैगाम है हाजिर इमाम का आज, कि हम दुनिया में दीन में मजबूत बने, मालदार बनो। मालदार बनना कोई गुनाह नहीं बल्कि जरूरत है हमको मालदार बनने की, मगर हमको वो माल हलाल चाहिए। वो माल नहीं चाहिए कि जिस माल के अंदर से बू आती हो। सही तरीके से मॉरलिटी के साथ जब हम अपनी रोजी कमाते हैं तो उसमें जो बरकतें होती हैं वो चोरी के माल में बरकतें नहीं होती हैं। हम हज़रत ईमान के मुरीद हैं, हमारे आमाल, हमारा बिहेवियर, हमारी मॉरेलिटी इस तरह की होनी चाहिए जैसे कि मैंने एक दो रोज पहले कल या परसों कहा, इमाम सुल्तान शाह फरमाया ऐसे बनो लोग कहें आगा खान के मुरीद फरिश्ते हैं। ये हालतें हमारी बहुत अच्छी हैं। हमको इन चीज़ों के अंदर मौलाना हज़रत ईमान की मोहब्बत रखते काम करना है, मिल के रहो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के अच्छे ख्यालात के लिए दुआएं मांगो, अच्छी हालत के लिए दुआएं मांगो, तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगो और खुसूसी तौर पे अपनी औलाद को अच्छी तालीम दे सकें कि आने वाले जमाने के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जमात के जो लोग होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, इससे हाई क्लास एजुकेटेड होंगे। हमारे लिए ये पैगाम बहुत ज़रूरी है। मोमिनों, अली नबी की खिदमत करो, अली नबी से मोहब्बत रखो, आले नबी के साथ हमेशा लगे रहो, सुखी और आबाद बनो, दीन और दुनिया में आबाद बनो, बदियों बुराइयों से बचो, फरमान बरदारी में रहो, नस्लत सुखरीत में रहो, एक दूसरे की मोहब्बत में रहो, एक दूसरे की मदद करो, आपके बलाएं मौला आपसे दूर कर देंगे, आपके दुश्मनों को दफा कर देंगे, आपकी बीमारियां आपके तकलीफें दूर कर देंगे, आपकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा देंगे, आपको दिन और दुनिया में आपकी औलाद को और आने वाली तमाम नस्लों को मौला हर हालत में अपनी छत्र छाया में अपनी पनाह में रखे और आपकी दुआओं को कबूल करें, सुखी आबाद।
Thank you.